आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक अमरीकी कहानी, पुल पर बैठा बूढ़ा। इसके मूल कथा लेखक हैं अर्नेस्ट हेमिंग्वे और हिंदी अनुवाद किया है सुशांत सुप्रिय ने। तो आइए सुनते हैं पुल पर बैठा बूढ़ा। स्टील के फ्रेम वाला चश्मा पहने एक बूढ़ा आदमी सड़क के किनारे बैठा था। उसके कपड़े धूल धूसरित थे। नदी पर पीपों का पुल बना हुआ था और घोड़ा गाड़ियां, ट्रक, मर्द और औरतें, बच्चे उस पुल को पार कर रहे थे। घोड़ा गाड़ियां नदी की खड़ी चढ़ाई वाले किनारों से लड़खड़ा कर पुल पर चढ़ रही थी। सैनिक पीछे से उन गाड़ियों को धक्का दे रहे थे। ट्रक अपनी भारी घुरघुराहट के साथ यह कठिन चढ़ाई तय कर रहे थे और किसान टखने तक की धूल में पैदल चलते चले जा रहे थे। लेकिन वह बूढ़ा आदमी बिना हिले डुले वहीं बैठा हुआ था। वह बेहद थक गया था, इसीलिए आगे नहीं जा सकता था। पुल को पार करके यह देखना कि शत्रु कहां तक पहुंच गया, यह मेरी जिम्मेदारी थी। आगे का एक चक्कर लगाकर मैं लौट कर पुल पर आ गया। अब पुल पर ज्यादा घोड़ा गाड़ियां नहीं थी और पैदल पुल पार करने वाले अब कम हो गए थे। उनकी संख्या लगातार कम होती जा रही थी, पर वह बूढ़ा अब भी वहीं बैठा था। आप कहाँ के रहने वाले हैं, मैंने उससे पूछा। मैं सैन कार्लोस से हूँ, उसने मुस्कुराकर कहा। वह उसका अपना शहर था जिसका जिक्र करने में उसे खुशी हो रही थी, इसीलिए वह मुस्कुराया। मैं तो पशुओं की देखभाल कर रहा था, उसने बताया। ओह, मैंने कहा, हालांकि मैं पूरी बात नहीं समझ पाया। हाँ, मैं पशुओं की देखभाल करने के लिए वहां रुका रहा। सैन कार्लोस शहर को छोड़कर जाने वाला मैं अंतिम व्यक्ति था। वह किसी गडरिए या चरवाहे जैसा तो नहीं दिखता था। मैंने उसके मटमैले कपड़े और धूल से सने चेहरे, उसके स्टील के फ्रेम वाले चश्मे की ओर देखते हुए पूछा, वे कौन से पशु थे? कई तरह के, उसने अपना सिर हिलाते हुए कहा। मुझे उन्हें छोड़कर जाना पड़ा। मैं पुल पर हो रही आवाजाही और आगे एब्रो के पास नदी के मुहाने वाली जमीन और अफ्रीकी से लगते दृश्य को ध्यान से देख रहा था। मन ही मन मैं यह आकलन कर रहा था कि कितनी देर बाद मुझे शोर का वह रहस्यमय संकेत मिलेगा, जब दोनों सेनाओं की आमने सामने भिड़ंत होगी। किंतु वह बूढ़ा अब भी वहीं बैठा हुआ था। वे कौन से पशु थे, मैंने दोबारा पूछा। उनकी संख्या कितनी थी? मैंने बताया ना, उनकी संख्या तीन थी, उसने कहा। दो बकरियां थी, एक बिल्ली थी और कबूतरों के चार जोड़े थे। और आप उन्हें छोड़कर आ गए? आपको उन्हें छोड़कर जाना पड़ा, मैंने पूछा। हाँ, तोपखाने की गोलीबारी के डर से सेना के कप्तान ने मुझे तोपखाने की मार से बचने के लिए वहां से चले जाने का आदेश दिया था। और आपका परिवार? आपका कोई परिवार नहीं है क्या, मैंने पूछा। मैं पुल के दूसरे छोर पर कुछ अंतिम घोड़ा गाड़ियों को किनारे की ढलान से नीचे उतरते हुए देख रहा था। नहीं, उसने धीरे से कहा, मेरे पास केवल मेरे पशु थे। बिल्ली तो खैर अपना ख्याल रख लेगी, लेकिन मेरे बाकी पशुओं का क्या होगा, मैं नहीं जानता। आप किस राजनीतिक दल का समर्थन करते हैं, मैंने पूछा। राजनीति में मेरी रुचि नहीं है, वह बोला। मैं 76 साल का हूँ। मैं 12 किलोमीटर पैदल चलकर यहाँ पहुंचा हूँ और अब मुझे लगता है कि मैं आगे की ओर नहीं जा सकता। रुकने के लिए यह अच्छी जगह नहीं है, मैंने कहा। अगर आप जा सकें तो आगे सड़क पर आपको वहाँ ट्रक मिल जाएंगे जहाँ से टोर्टोसा के लिए एक और सड़क निकलती है, उसने कुछ विनम्र भाव से पूछा। मैं यहाँ कुछ देर रुकूंगा, उसने फिर कहा, और फिर मैं यहाँ से चला जाऊंगा। ट्रक किस ओर जाते हैं? बार्सिलोना की ओर, मैंने उसे बताया। उस और तो मैं किसी को नहीं जानता, उसने कहा। लेकिन आपका शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसकी आंखों में भी नम्र भाव था। उसने खोई और थकी हुई आंखों से मुझे देखा, फिर अपनी चिंता किसी को बांटने के इरादे से कहा, मुझे यकीन है बिल्ली तो अपना ख्याल रख लेगी। बिल्ली के बारे में फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है मुझे, लेकिन बाकियों का क्या होगा? बाकियों के बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या वो जान बचा पाएंगे? मुझे तो लगता है कि शायद आपके बाकी पशु पक्षी भी इस मुसीबत से सही सलामत निकल आएंगे। क्या आपको ऐसा लगता है? उसने जिज्ञासा जाहिर की। क्यों नहीं, दूर स्थित नदी के किनारे को देखते हुए मैंने कहा, वहां अब कोई घोड़ा गाड़ी नहीं थी, लेकिन वे तोपखाने की मार से कैसे बचेंगे, जबकि मुझे तोपखाने की संभावित गोलीबारी की वजह से वहां से चले जाने के लिए कहा गया था। तो क्या आपने कबूतरों का पिंजरा खुला छोड़ दिया था? मैंने पूछा। जी हाँ, तब तो वे उड़ जाएंगे। जी हाँ, वे जरूर उड़ जाएंगे, लेकिन बाकियों का क्या होगा? बेहतर होगा मैं बाकियों के बारे में अब सोचूं ही नहीं, उसने कहा। अगर आपने आराम कर लिया हो तो मैं चलूं, मैंने कहा। अब आप उठकर चलने की कोशिश कीजिए। शुक्रिया, उसने कहा और वह उठकर खड़ा हो गया, लेकिन उसके थके हुए पैर उसे संभाल नहीं रहे थे और वह कांपते हुए वापस वहीं नीचे बैठ गया। मैं तो केवल पशुओं की देखभाल कर रहा था, उसने निरुत्साहित सी आवाज में उदासी के साथ कहा, हालांकि अब वह मुझसे बातचीत नहीं कर रहा था। मैं तो केवल पशुओं की देखभाल कर रहा था, वह सिर्फ यही बोल रहा था। अब उसके लिए कुछ भी नहीं किया जा सकता था। वह ईस्टर के रविवार का दिन था और फासिस्ट फौजें एब्रो की ओर बढ़ रही थी। वह बादलों से घिरा स्लेटी दिन था। बादल बहुत नीचे तक छाए हुए थे, जिसकी वजह से शत्रुओं के विमान उड़ान नहीं भर पा रहे थे। यह बात और यह तथ्य कि बिल्लियां अपनी खुद की देखभाल कर सकती हैं, उस बूढ़े के पास अच्छी किस्मत के नाम पर केवल यही चीज मौजूद थी, केवल यही एक विश्वास मौजूद था, बिल्लियां अपनी देखभाल खुद कर सकती हैं। धन्यवाद।